अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम श्रुतात्मने नमः। सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं प्रणम्य वीरं परमावबोधं आशाधरो मूढविबोधनाय सो धर्मशास्त्र पदानि किंचित् प्रगटीकरोति। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है, अनगार धर्मामृत नामक ग्रंथ है, और उसमें अभी आए हम पृष्ठ संख्या 71 पर, 71। कल हमने ये बात देखी थी कि सम्य दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक यानी तप के दोषों को दूर करके उनको निर्मल करने को उद्योतन कहा था। उनमें ने इन चारों में अपने को एकमेक रूप से वर्तन करना उद्यवन कहा था। 71 पेज। लाभ पूजा ख्याति आदि की अपेक्षा न करके निष्प्रभ भाव से उन सम्यक दर्शन आदि को निराकुलता पूर्वक वहन करना है, उस रूप रहना धारणा है, और संसार से भयभीत अपनी आत्मा में इन सम्यक दर्शन आदि को पूर्ण करना सिद्धि है, यानी उसकी पूर्णता को पहुंचना, और परिषय उपसर्ग आने पर भी स्थिर रहकर अपने को मरणांत तक ले जाना, यानी समाधि मरण करना, समाधि पूर्वक मरण करना, उसी को निस्तरण कहा था। ये बातें हो गई। अब यहाँ आगे हम पढ़ेंगे, 96 नंबर तक तो हमने पढ़ा था। अब कहते आगे सम्यक दर्शन आदि के मलों को कहते हैं। सम्यक दर्शन आदि के यानी सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र के, सबके तप से। तो ये 97 नंबर ऊपर 97 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। शंकादयो मलादृष्टेर व्यत्यासा निश्चयो मते वृत्तस्य भावना त्याग तपस स्याद संयम। सम्यक दर्शन के मल शंका आदि है। ये शंका आदि कौन बताना चाहते हैं? कितने हैं शंका आदि? हाँ वीरेश भाई, आठ आठ। आप बताएंगे ना? निशंक से विरुद्ध शंका, कांक्षा। हाँ, कांक्षा को या वांछा को, एक ही बात है। हाँ हाँ, मूढ़ दृष्टि। हाँ बरोबर। तो कहते हैं उसको ये शंका आदि जो है वो इसके मल है। ज्ञान के मल क्या हो गए? विपर्य, संशय और अनध्यवसाय है। और चारित्र का मल प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाओं का त्याग है। भावना करना ये तो व्रत पालना है, और उसका वो नहीं करना उसका त्याग है, वो उसका मल है। तप का मल प्राणियों और इंद्रियों के विषय में संयम का अभाव है, क्योंकि ये संयम को ही तप कहा है और उसका अभाव है वो इसका मल है। भावना अलग बात है और अतिचार अलग बात है। हाँ, अतिचार प्रत्येक के पांच पांच है। हाँ, प्रत्येक के पांच पांच बताए, इसमें बताए होगी शायद। पांच पांच भावना हमने पहले देखे थे। देखो अपन इसमें भी बताएंगे ना, ये किसके चारित्र में बताए ना ये, क्योंकि बहुत विस्तार से ज्ञान के और ये मिथ्यात्व की बात आगे बता रहे हैं। तो बहुत आगे आके आएगी बात, व्रत की महिमा शंका दी, 200 पेजेस के भी आगे ये बातें आने वाली है। ये आपको इंडेक्स में मिलेगा शायद, ये 5-5 व्रतों की भावनाएं जो हुए। तो चारित्र आराधना 217 से शुरू होती है, व्रत के भेद, परंतु उसकी भावना कहाँ लिखी, 5-5 भावना बतानी है ना हमको। आगे आएगी बात में देखेंगे, अभी तो अभी पढ़ेंगे हम। ये अतिचार तो हमने देखे थे, परंतु यहाँ भावना की कुछ अलग बात बता रहे हैं। भावना ने उस रूप होना और उसका त्याग, यानी व्रत छूट जाना, व्रतों का त्याग, ऐसा ले सकते हैं। क्योंकि तप में कैसे लिया, संयम का अभाव, और यह प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाओं का त्याग, यानी व्रतों का त्याग हो जाता है, इसकी बात है। विशेषार्थ में शायद बताएंगे तो देखेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं हम प्रेज पृष्ठ संख्या 72 पर, 72 यहाँ के पहले श्लोक 92 में उद्योतन आदि के द्वारा, उद्योतन अभी हमने उद्योतन उद्यवन वगैरह अभी हमने देखे थे, मोक्ष मार्ग का आराधन करना कहा था, उसको हमने दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना आदि नाम दिए थे, और इसी को यहाँ मोक्ष मार्ग का आराधन बताया। भक्ति भी आराधना है, 249 मिल गया आपको, देखो अहिंसा व्रत की जो है ना, वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, क्रिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, अब उसका त्याग करना है, अहिंसा व्रत का भंग होना, इस तरह से लेना है। हाँ, केवल अतिचार की बात नहीं है यहाँ पर, वो व्रत पालना है क्या करना उसकी बात है। ऐसे हर एक का वो बताएंगे उसमें, यानी ये विषय विस्तार से आने वाला है, समय दर्शन, समय ज्ञान और समय चरित्र, वो तो आगे यानी 200 पेजेस तक तो समय दर्शन ज्ञान की बात चलेगी। अभी हम देखते हैं श्लोक 92 में उद्योतन आदि के द्वारा मोक्ष मार्ग का आराधना करना कहा था, भक्ति भी आराधना है, अतः तो उसका लक्षण कहते हैं। आराधना समझते ना, स्तवन जिसको हम भगवान की पूजा करना, आराधना करना हम कहते ना। अब 98 नंबर, वृत्तिर्जात सुदृष्ट्या दे तद्गता तिथेषुया उद्योतादिषु सा तेषां भक्तिराराधनोच्यते। जिसको सम्य दर्शन आदि परिणाम उत्पन्न हो गए हैं, अर्थात सम्य दृष्टि पुरुष की सम्यक दर्शन आदि में पाए जाने वाले उद्योतन आदि रूप से आदि रूप अतिशयों में जो प्रवृत्ति होती है, उसे सम्यक दर्शनादि की भक्ति कहते हैं, उसी का नाम आराधना है। अब आराधना कहो भक्ति कहो एक ही बात है, तो सम्यक दर्शन की आराधना इन्हें क्या, तो हमने यहाँ पहले देखा था कि सम्य दर्शन का उद्योतन यानी क्या, उसके मल को दूर करना उसके उद्योतन, उसका उद्योतन यानी क्या, तो उस रूप से रहना वो उसका उद्यवन है। लाभ पूजा ख्याति उसकी अभी अपेक्षा नहीं करके निराकुलता रूप से उस रूप रहना ये उसका धारणा है, और ये पूर्णता को पहुंच जाना वो सिद्धि है। इस तरह से हमने हरेक पर ले लिया था, और समाधि पूर्वक मरण करने को निस्तरण का, ये मात्र समय दर्शन पर, वहां तो चारों को एक साथ बताया था, यहाँ समय दर्शन की आराधना क्या है तो उसमें ये पांचों लगा लिया। निश्चय ने से निरपेक्ष व्यवहार नय का विषय असत्य है। देखो ये क्या कहने, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। हमने देखा था ये नयों के दो भेद बताए जाते हैं कि निश्चय नय और व्यवहार नय। मुख्य को भी निश्चय कहते हैं, या जो जैसी रियल है वस्तु स्थिति उसको वैसा बताना उसको हम कहेंगे, और व्यवहार नय उपचार करता है। वस्तु स्थिति तो ऐसी है नहीं है, समझने समझाने के लिए इसका, या निश्चय कैसा है उसको समझने के लिए जो वर्णन होता है उसको हम व्यवहार नय कहेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि जहाँ निरपेक्ष ने सर्वथा अगर हम कहेंगे, निरपेक्ष करते जहाँ निश्चय नय को कंसिडर किए बिना, मात्र ओनली व्यवहार नय का जो कथन होगा, जो उसको हम सर्वथा रूप से ग्रहण करेंगे, उपचार नहीं सर्वथा वैसा है, तो कहते वो गलत होगा, एकांत होगा, उसको दुर्नय कहेंगे, कुनय कहेंगे, वो नय है ही नहीं। हाँ, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव में भी ये निश्चय व्यवहार की बात आई।
कर्म जो होता है संबंध, हाँ। कर्ता कर्म अपने अन्य से निरपेक्ष है,
जो बात है, हाँ, वो अन्य द्रव्य से निरपेक्ष है। और यहाँ तो कहते हैं यदि यहाँ निरपेक्ष हो जाए व्यवहार ने, तो ये झूठा हो जाएगा, यानी ये सापेक्ष होता है। व्यवहार ने निश्चय का सापेक्ष होता है, जैसे हमने कल उदाहरण देखा था, कौन सी, चाय की बरनी। तो बरनी नहीं होगी तो क्या होगा, उसको चाय की बरनी कौन कहेगा, हा? तो इस तरह से निश्चय नय से निरपेक्ष व्यवहार नय का विषय असत है, यानी वो कुछ है ही नहीं है। जहाँ निश्चय है उसके सहचर वाले को व्यवहार से हम कह देते वैसा, जहाँ निश्चय समय दर्शन है वहाँ जो अन्य चीजें सात तत्वों का श्रद्धा नादि जो है उसको हम व्यवहार से समय दर्शन कह देते हैं। यदि वहां निश्चय नहीं है तो वो व्यवहार नय भी नहीं कहलाएगा। अतः निश्चय निरपेक्ष व्यवहार का उपयोग करने पर स्वार्थ का विनाश ही होता है, यह दृष्टांत द्वारा कहते हैं। स्वार्थ यानी उसका जो कथन है उसका तो विनाश हो जाता है। कैसा है वो, निश्चय से निरपेक्ष व्यवहार का उपयोग, यानी वो व्यवहार मात्र, ये यानी कुछ जैसे हम कहेंगे ना, मुनियों के तो तप आदि होते हैं, तो बाह्य तप ही के पालन करने से ये तो ये चारित्र हो गया, उसको चारित्र कह दिया और लोगों ने उसी को मान लिया और उसी से मोक्ष होगा ऐसा भी मान लिया, तो क्या वो हो सकता है कभी इस तरह। लेकिन स्वार्थ का विनाश होता है, यह दृष्टांत द्वारा कहते हैं। व्यंजन ककार आदि अक्षरों को भी कहते हैं और दाल शाक वगैरह को भी कहते हैं। ये व्यंजन शब्द मालूम है, उसका अर्थ क्या होता है, व्यंजन ही नहीं क्या, हाँ विविध प्रकार के, जिसको जिसकी रुचि उसको बता दिया, इन्होंने बताया कि वो विविध प्रकार के पदार्थ व्यंजन, हाँ, और इन्होंने बताया क, ख, ग, दोनों ही सही है, यहाँ वही बात अभी हमने पढ़ी, व्यंजन किसको, स्वर और व्यंजन जिसको कहते हैं, अ, आ, ई, वो स्वर कहलाते हैं, क, ख, ग, घ, ञ, छ, ञ, प, फ, भ, ये सब क्या है, सारे व्यंजन है। तो व्यंजन स्वरों को छोड़कर जो बाकी जो अक्षर है उसको व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन को वहाँ ककार यानी क का की वो सब ये सारे व्यंजन है, उसको ककार कहा, या क, क को भी ककार कहे, क, ख, ग, घ, ये सारे, हाँ, बारह का। तो कहते अक्षरों को भी कहते हैं और दाल शाख वगैरह को भी कहते हैं। क्या व्यंजन बनाए, यानी आज क्या तो खाना बनाया उसका व्यंजन कहते हैं। जैसे स्वर रहित व्यंजन का उच्चार करने वाला अपनी बात दूसरे को नहीं समझा सकता, आप कोई भी वाक्य बोल दीजिए, बोलो मैं क्लास में आया, म को दो मात्रा वो ऊपर लगाए वो मत लगा लो क्योंकि उसमें म में आए डाला आपने, क्लास में क लगाया ल लगाया फिर क और ल तो चलेगा, तो उसको क्ला कर दिया ना आ लगाया उसमें वो नहीं चलेगा। और ये सारे जो व्यंजन होते हैं जिसको हम कहेंगे हलंत होते हैं पाय मोड़ का, उसमें और डाले बिना वो कभी पूरा नहीं कह सकते। तो स्वर के बिना व्यंजन से ये क्या लिखा, स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करने वाला अपनी बात दूसरे को नहीं समझा सकता। तो ख ग ग क्योंकि हम उसका देखो उसका कोई उकार लगाते हैं अकार लगाते हैं इकार लगाते हैं तभी तो उसका कुछ मीनिंग बनता है, और खाली वो पाय मुड़का वाला हो उसमें कुछ हम जैसे हम ढ ग भी कहेंगे मेघ के लिए तो वो ढ पूरा नहीं उसमें अ डाला है, वो ग में भी अ डाला है तभी तो हम कुछ उसका मीनिंग उसमें से निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या लिखा, स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करने वाला अपनी बात दूसरे को नहीं समझा सकता अतः स्वार्थ से भ्रष्ट होता है। स्वार्थ यानी उसका जो कार्य है उसका कहना चाहता है वो स्वार्थ कहते हैं, स्वार्थ यानी वो स्वार्थ और परोपकार परार्थ वो बात नहीं है, यहाँ स्वार्थ का अलग अर्थ है।
हमने जीव कांड में ज्ञान मार्ग में ये बात सीखी तीन तीन प्रकार है।
ह्रस्व दीर्घ और प्लुत प्लुत ऐसे तीन तीन देखे थे और ई मालूम नहीं ऐसा करते वो तो तीसरा ही हमें ऐसा करता ऐसा तो कहाँ हम यूज करते परंतु उसका उच्चारण तो होता है। अभी ये तो हुआ उदाहरण दृष्टांत, ये स्वर बिने के व्यंजन का उच्चारण करेंगे उच्चारण तो हम कर सकते हैं परंतु उसका कोई हम वाक्य बोलकर उसका अर्थ दूसरे को समझा नहीं सकते,
हमको जो बताना है
वो अर्थ यानी उस उन व्यंजनों का कुछ अर्थ दूसरे को भाषित नहीं होगा। स्वार्थ से भ्रष्ट होता है यहाँ जैसे ये दूसरे व्यंजन का अर्थ बताए, घी चावल आदि के बिना केवल दाल शाक खाने वाला स्वस्थ नहीं रह सकता अतः वह स्वार्थ यानी पुष्टि से भ्रष्ट होता है। ये दोनों प्रकार से उसको समझाया, ये दृष्टांत दोनों ही है। वैसे ही ये दोनों ही प्रकार के व्यंजनों पर जो घटित किया है अभी मूल बात बता रहे, क्या बता रहे, निश्चय नय से विमुख बहिर्दृष्टि वाले मनुष्यों के संपर्क से होने वाले अज्ञानवश अधिकतर अभूतार्थ व्यवहार की ही भावना करने वाला कैसा है वो जी, व्यवहार नय की भावना करते हैं ना, व्यवहार नय को ही सर्वथा सच मानकर उपाधेय ने उसको उपचार नहीं मानता उसको रियलिटी मानता, वो कैसा है निश्चय नय से विमुख है और बहिर्दृष्टि वाला है और उस मनुष्यों के संपर्क से होने वाले अज्ञानवश, अभी उसका निमित्त के रूप से वो अन्य जो बहिर्दृष्टि वालों के संपर्क में है तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया इसने उसी को ग्रहण किया उसी को सच मान लिया, जो व्यवहार का कथन था जो उपचार का कथन था उसको सच मान लिया। अज्ञानवश अधिकतर अभूतार्थ व्यवहार की ही भावना करने वाला यानी उसी को सच समझने वाला और उसी को करना चाहता है बस, अपने मोक्ष सुख रूपी स्वार्थ से भ्रष्ट होता है। उसका प्रयोजन क्या है, मोक्ष सुख की प्राप्ति, ये उसका स्वार्थ है जो प्रकट करने योग्य है परंतु उससे वो भ्रष्ट रहता है नहीं उससे विमुख रहता है, वो कभी उसको मिलेगा नहीं, क्यों, जो अभूतार्थ ऐसा व्यवहार है वैसा है उसने सर्वथा मान लिया। मिथ्या दृष्टि की तो बात है क्योंकि उसका निश्चय के निरपेक्ष व्यवहार है, व्यवहार नहीं है, उसके तो व्यवहार नहीं है ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा, निश्चय नहीं से विमुख, क्या कहते हैं, अभूतार्थ व्यवहार की ही भावना करने वाला, अभूतार्थ व्यवहार कर दिया। वो जो नए का कथन था उसको उसने सर्वथा मान लिया, सच मान लिया, उपचार नहीं माना। विशेषार्थ अभी इसको और समझा रहे, देखो आचार्य कुनकुंद स्वामी ने यहाँ एक अगड़ा लिखा फुटनोट में, समय सार गाथा 11 यहाँ उन्होंने लिखी है, हम पढ़ेंगे उसको। व्यवहारो भूयत्थो भूयत्थो देशिदो सुद्धनो भूयत्थमसिदो खलु सम्मायुठी हवई जीवो। उन्होंने क्या कहा, व्यवहार ने को अभूतार्थ, व्यवहारो अभूयत्थो यानी अभूतार्थ है, और शुद्ध ने को भूतार्थ कहा है। यहाँ व्यवहार नय ने भेद रूप करना, वो व्यवहार है, वो अभूतार्थ है, तो भेद रूप वस्तु नहीं, अभेद है। शुद्ध नय ने भेद नहीं करना ही शुद्धता, भेद करना ही अशुद्धता, और वो व्यवहार है और वो अभूतार्थ है यानी नहीं है। मन तो नहीं है कहने में सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रयोजनवश है, समझने के लिए है, परंतु निश्चय का इन्हें हम अपना अनुभव करना चाहते हैं, अभेद की दृष्टि, इन्हें अभेद को हम सोचना चाहते हैं, ज्ञान में लेना चाहते हैं, उसकी दृष्टि करना चाहते हैं, उस समय उसको अभूतार्थ कह दिया, उसके सामने वो है ही नहीं। उसने तो निश्चय को बताया, ऐसा आता है ना नए चक्र में भी, जिसने निश्चय का पूरा प्रतिपादन किया वो निश्चय उसको है ही नहीं कह देता, क्योंकि उसका प्रतिपादन करके मिट जाना ही उसका प्रयोजन है। उसको जिंदा रखोगे तो निश्चय का लक्ष्य कैसे करेंगे, उसका प्रयोजन कब घटित होगा, कि जो वो बताना चाहता है वो हमने सुना समझा, उसके प्रयोजन की सिद्धि हुई, फिर अभी उसको गौण करके नहीं है करके हम अभेद की दृष्टि करेंगे, तब हमने व्यवहार को भी सही रूप से ग्रहण किया और निश्चय को भी सही रूप से ग्रहण किया। सही रूप कब कहेंगे, जाना उसको और फिर गौण करके, वो तो ज्ञान की परे में पड़ा है बरे, परंतु अभी हमने उसको गौण कर दिया और निश्चय को मुख्य किया, जो निश्चय का जो कथन है उसका न्याय का जो प्रतिपादन है। यही कहते यहाँ कुनकुंद स्वामी ने, व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। तथा जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह सम्य दृष्टि होता है। पहले अभूतार्थ वाला व्यवहार नहीं, उसका कथन जाना, गुरुओं से उसको पढ़ा, बराबर समझा, आत्मा कैसा है, क्या है, क्या है, सब सभी एंगल से, अब उसको गौण कर दिया और क्या क्या, शुद्ध नय ने भूतार्थ का आश्रय लिया, क्योंकि शुद्ध नय भूतार्थ है। शुद्ध नय क्या बताता है, अभेद वस्तु को बताता है, तो उसको लक्ष्य में लिया, उसको दृष्टि में ने स्व उसमें स्थापित किया, तो कहते हैं उसका आश्रय लेता है वह सम्य दृष्टि हो जाता है। आचार्य अमृतचंद्र भी ये दो नंबर पुरुषा सिद्धि उपाय की गाथा बताइए, निश्चय मिह भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुख प्रायः सर्वोपि संसार। कि निश्चय ही भूतार्थ है और व्यवहार को अभूतार्थ वर्णन किया है, और भूतार्थ के बोध से ने ज्ञान से जो विमुख है प्राय ने इन जनरल सभी एवरेज सभी संसारी प्राणी ये उसी को सच मान रहे हैं, भूतार्थ से विमुख हो रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है देखिए, अमृतचंद्र भी निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहते हैं, तथा कहते हैं प्राय सभी संसार भूतार्थ के ज्ञान से विमुख है, यानी भूतार्थ को नहीं जानता। प्रायः सभी क्यों कहा, क्योंकि अनंत जीव तो इससे विमुख ही है, संगी पंचेंद्रियों में भी बहुत कुछ गिने चुने ही जीव इसको जान रहे हैं, भूतार्थ को। भूतार्थ को नहीं जानने वाले बाह्य दृष्टि लोगों के संपर्क से ही, बाह्य दृष्टि यानी बहिर्दृष्टि कहो, मिथ्या दृष्टि कहो। दृष्टिया ने स्व किसमें स्थापित किया, जो स्व नहीं है इसे बाह्य पदार्थ। क्या क्या बाह्य में? शरीर है, अन्य पदार्थ है, राग आदि के परिणाम है। उस रूप मैं हूँ ऐसे बाह्य में दृष्टि है, कथन भी वो वैसे ही करते हैं। यहाँ वही लिखा है कि बाह्य दृष्टि लोगों के संपर्क से ही अज्ञानवश व्यवहार को ही यथार्थ मानकर उसी में उलझे रह जाते हैं, क्योंकि ये इसका उपदेश देने वाले प्राय बहुत है। भूतार्थ का उपदेश तो देने वाले भी विरले होंगे, उसको समझने वाले विरले हैं। भूतार्थ का मतलब है भूत अर्थात पदार्थों में रहने वाला, अर्थ अर्थात भाव। भूत का अर्थ क्या है? जो विद्यमान है, पदार्थों में जो विद्यमान है उसको कहिए भूत। जैसे हम कहते हैं सद्भूत, तो भूत का अर्थ क्या है? उसमें है, तो पदार्थों में रहने वाला। अर्थ है भाव। भूतार्थ का अर्थ क्या है? पदार्थों में जो भाव है उसको भूतार्थ कहा, और जो नहीं है परंतु उपचार से कहेंगे उसको अभूतार्थ कहेंगे। तो कहते हैं पदार्थों में रहने वाला अर्थ अर्थात भाव, उसे जो प्रकाशित करता है, दिखाता है, उसे भूतार्थ कहते हैं। इसलिए निश्चय को भूतार्थ कहा, क्योंकि वो पदार्थों का असली भाव बताता है। जैसे जीव और पुद्गल में अनादि काल से एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ये सुना है नाम कभी? अश्विन बहन नहीं सुना? सुना। एक क्षेत्रावगाह क्या है? जैसे हम सभी एक ही रूम में बैठे हैं, हमारा सबका एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना?
नहीं
नहीं, अच्छा। एक ही सेम स्पेस में, स्पेस में, आकाश के उतने ही प्रदेश में जो सुपर इम्पोज होकर रह रहे। जैसे हमने एक कांच का यहाँ क्यूब रखा है कोई भी, तो उसमें तो हमारी उंगली तो प्रवेश नहीं करती है, कोई तो उसमें प्रवेश करेगा ना? आकाश तो है ही वहाँ, बरोबर है। वहाँ धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, सूक्ष्म जीव भी हो गया, और कुछ प्रकाश पुद्गल कोई जाएगा कि अंदर नहीं? कौन सा जाएगा? प्रकाश जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, तो दिख रहे हैं ना, एक्सरे जाएंगे, रेडिएशन जाएंगे। वो क्या है, उन्होंने एक दूसरे को अवगाहना दी उतने ही स्पेस में। अभी वो बात छोड़ो, ये एक ही यहाँ रूम है इतनी, और उसमें इतने बल्ब जलाए, तो एक बल्ब का प्रकाश कहाँ तक फैला है? पूरे एक रूम में। दूसरे का वो भी पूरे रूम में, तीसरे का उसी स्पेस में। तो एक ही स्पेस में इन सब का प्रकाश एक दूसरे को अवगाहना देता, एक ही क्षेत्र में अवस्थान है सबका, उसको कहेंगे एक क्षेत्रावगाह। यहाँ जीव और पुद्गल जो बताया है, क्योंकि इस लोक में तो जीव अनंत है, पुद्गल तो उससे भी अनंतानंत है, और लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है। तो एक दूसरे को अवगाहना दिए बिना वो रहेंगे कैसे? जहाँ जीव है वही उसी क्षेत्र में, जैसे मैं एक जीव हूँ, तो यहाँ कर्म के अनंत अनंत, जिसको मेरा कर्म कहने में आएगा उपचार से वो भी अनंत अनंत है, और जिसको मेरा कुछ लगता नहीं है ऐसे उससे भी अनंत अनंत पुद्गल परमाणु यहाँ पड़े हैं, क्योंकि लोकाकाश पूरा पुद्गलों से खचाखच तो भरा हुआ है। तो ये कैसे जीव और वो पुद्गल एक क्षेत्र, उसका एक क्षेत्र होगा संबंध। हम कर्म की अपेक्षा कहेंगे एक जीव और उसका जो हम कर्म कहेंगे, क्योंकि वो यहाँ तो शरीर या औदारिक शरीर तो छोड़ के गया, मर गया, हम क्या कहते हैं? ये बॉडी यहाँ रहेगी, चलो हटाओ उसको। तो जीव चला गया हम कहेंगे, तो उसके साथ कुछ पुद्गल गया कि नहीं गया? कार्मण शरीर और तेज शरीर गया उसका, अनंत अनंत परमाणु उसके साथ। वो कैसे है? तो उसके एक क्षेत्रावगाह। तो ये क्या कहते हैं, जीव और पुद्गल में अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह संबंध है, दोनों मिले जुले एक जैसे प्रतीत होते है, नहीं है? कर्म की बात क्या है? ये तो शरीर जहां पर है, कोई रेडीमेड शरीर था और हम उसमें घुस गए, हम किसी अन्य गति से आए हैं। और आपने तो समझा है वो कर्णानियोग में क्या छह पर्याप्ति होती है, वो पुद्गलों का परमाणु का ग्रहण होता है, वो शरीर रूप से रहना वगैरह वगैरह जो कोई निमित्त रूप से बातें होती है, तो यहाँ शरीर की रचना हुई। कहाँ हुई? जहाँ जीव के प्रदेश है उसी स्पेस में हुई, और फिर कुछ काल के लिए एक बंधन रूप जैसा दिख रहा है हमको। सच देखा तो अनंत परमाणु हर समय नए आते हैं और पुराणों में से अनंत चले जाते हर समय। ये धूल आती है जाती है और हम तो जरा आईने में यहाँ ठीक ठाक है ना, कल जैसे आज दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, अरे बहुत दुबले हो गए, अरे बहुत जाड़े हो, जरा मोटे, अभी जरा ट्राई करो, मेंटेन करो। किसको मेंटेन? तो ये कहते एक मिले जुले प्रतीत, ये इसी की अनादि से भूल हो। यहाँ तो जीव का जानने रूप कार्य चल रहा है, अन्य अनंत गुणों का भी कार्य चल रहा है, शरीर का अपना कार्य, पुद्गल का अपना कार्य चलता है, दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं। तो जीव इतना सियाना है ना, बुद्धि वाला है, तो उसको लगता है ये जो अजीव का कार्य दिख रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, मेरा कार्य तो मैं ही कर रहा हूँ, ये अजीव का भी मैं ही कर रहा हूँ। कोई तो ऐसे भोले है कि जानने का कार्य शरीर ही करता है, मानते हैं ब्रेन से सब जाना जाता है, नहीं मालूम आपको? ब्रेन ऑर्डर देता है, चलो हाथ हटाओ वहां से, तो गर्म लगा कुछ हाथ हट गया। ये तो साइंस में सीखे कि नहीं हम? तो कहते एक मिले जुले एक जैसे प्रतीत होते हैं। ये पंडित टोडरमल जी ने कितनी बातें बताई कि उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बहुत है, घने हैं। इसलिए जीव की भ्रमणा क्या है कि मैं ही ये सब कार्य कर रहा हूँ, मैं ही इस रूप हूँ, किंतु निश्चय ने आत्मद्रव्य को शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न ही प्रकट करता है। व्यवहार ने इन्हें क्या कहा? अरे ये केंद्रीय जीव है, ये दो इंद्रिय, ये तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव है, ये मनुष्य है, ये नारकी, ये देव है, ये तीर्यंश है। व्यवहार ने इन्हें सब ऐसे भेद करके समझ, ये तरह से ये स्थावर है, ये संसार, ये मुक्त है। निश्चय ने क्या कहते? आत्मद्रव्य, तो आत्मद्रव्य जीव द्रव्य है, वो शरीर कभी हुआ ही नहीं। फिर भी हमारे आगम में ही बताया एक इंद्रिय आदि उसके भेदों पे, ख्याल में ना, वो उनके कर्मों की अपेक्षा, कर्मों के उदय की अपेक्षा शरीर की रचना हुई है, ज्ञान का उहार है, वो सब वहाँ हम उसमें जो हम देखते हैं मार्गणाओं में वगैरह, उसका क्या स्वरूप है, कैसे उनके भाव होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, सब बातें होती है उसमें। परंतु वो क्या है? व्यवहार कथन, वो नहीं है, वो नहीं है, अपने जगह है, क्योंकि वो भी संयोग का ज्ञान कराता है, जीव के पर्याय का ज्ञान करता है, उसका जो कुछ उसकी अभी वर्तमान में कंडीशन है उसका ज्ञान हमें उसके द्वारा हो जाता है। परंतु जीव द्रव्य एक इंद्रिय नहीं है। जब जीव द्रव्य की बात आती है, देखो तत्वार सूत्र में ही जीवों के भेद बताए, और फिर जीव का लक्षण बताना था तब क्या बताया? उपयोगो लक्षण। तो वो तो सबके लिए, ये तो जीव द्रव्य का लक्षण हो गया, सिद्ध हो या निगोध हो या एक इंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, उपयोग यानी ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, ये जीव का लक्षण है, चैतन्य उपयोग उसका लक्षण है। तो कहते किंतु निश्चय ने आत्मद्रव्य को शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न ही प्रकट करता है, वो भिन्न ही है, और ये जो जैसा है वैसा बताता है, और मुक्ति दशा में वह भिन्नता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। देखो यदि भिन्नता नहीं होती तो कभी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होती। अनादि काल से जीव और पुद्गल बंधे हुए अवस्था में हम कर्मों की अपेक्षा देखेंगे, जब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, मोक्ष दशा प्रकट होती है, तो वो कर्म और जीव सर्वथा भिन्न हो जाते और जीव इन इट्स प्योर फॉर्म, जिसको हम कहेंगे वो मुक्त हो गया, सिद्धालय में हम कहेंगे विराजमान हो जाते, लोकाकाश के अग्रभाग, वो भिन्न हुआ ना, यही सिद्ध करता है। वो कभी एक मिले ही नहीं थे, नहीं? एकमेक नहीं हुए थे, भले एक क्षेत्रावगाह में थे, फिर भी दोनों का अपना अपना अस्तित्व भिन्न था। यदि भिन्न नहीं होता तो जुदे हो ही नहीं सकते। दूध में हमने पानी मिलाया तो दूध जैसा ही दिख रहा है, परंतु उसको उबालते रखो तो पानी की बाफ होकर निकल आती, तो भिन्न हो जाती। ऐसे यहाँ कहते हैं कि निश्चय मुक्ति दशा में वो भिन्नता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। इसी से तो सिद्ध होता है ना कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी जीव द्रव्य हूँ, वे भी जीव द्रव्य है, वो सर्वथा कर्म से भिन्न हो गए हैं, मैं अभी कर्म के संयोग में रहते हुए भी उससे भिन्न हूँ। अभी संयोग में है उसका ज्ञान करना है, नहीं तो अभी हमें होने मैं अभी मुक्त ही हूँ सर्वथा अगर मानेंगे तो फिर आगम पढ़ने की भी क्या आवश्यकता है, उसका उपाय करने की मुक्त ही हो ना, परंतु वो अपेक्षावश निश्चय ने का कथन है। व्यवहार ने को नहीं जानेंगे सर्वथा इसे अभी पर्याय में भी मान लेंगे तो क्योंकि वो तो निश्चयाभासी हो जाएंगे। ये बैलेंस कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अन्य मत में ऐसे भी कुछ मत है कि सर्वथा वो मुक्त ही मानते शुद्ध ही है, श्रीकाल शुद्ध ही है, सदाशिव ही है। देखिए तो इसलिए निश्चय ने सत्यार्थ या भूतार्थ है, यानी जो है असलियत उसको बताने वाला है, तथा अभूतार्थ का मतलब है पदार्थों में न होने वाला भाव, यानी जो पदार्थों में तो है नहीं है फिर भी कथन तो कर रहे, उसे जो कहे वह अभूतार्थ है। जैसे जीव और पुद्गल का अस्तित्व भिन्न है, दोनों अपने अपने में सत है, स्वभाव भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, दोनों का लक्षण भिन्न है, हमने कह नाम भिन्न है, लक्षण भिन्न है, उसके कार्य प्रयोजन भिन्न है, फिर भी एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से आत्मद्रव्य और शरीर आदि परद्रव्य को एक क्या लिखांगे कहा जाता है। ये कहना ये उपचार है, ये व्यवहार कहने में कोई दोष नहीं, क्योंकि ऐसे कथन तो मिलेंगे हर बार, ये पूरा का पूरा ऐसा विभाजित करके नहीं बताया जाएगा, यहाँ कहेंगे ये मनुष्य है, ये देव है, ये नारकी, ये तिर्यंच है, किन्तु वहां पर भी आत्मद्रव्य भिन्न है, उसके शरीर आदि जो कुछ संयोग में पदार्थ है उससे भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। अतः व्यवहार ने असत्यार्थ है, एक कहा जाता है, ये कहना ही व्यवहार है, उसको व्यवहार नहीं कहेंगे, परंतु वहां निश्चय की अपेक्षा होगी तो ये व्यवहार ने नाम देंगे, और इसको सर्वथा शरीर रूप ही मानेंगे तो ये तो उठा आभास हो गया उसको। आशय यह है कि जीव के परिणाम निश्चय ने के श्रद्धान से विमुख होकर, यानी निश्चय का श्रद्धा नहीं करते हुए शरीर आदि परद्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर जो प्रवृत्ति करते हैं उसी का नाम संसार। क्या हो रहा है यहाँ पर, जीव क्या कर रहा है कि जो शरीर आदि परद्रव्य, हमारा नियरेस्ट परद्रव्य तो यही है ना, कोई वो सोफे के साथ ये मैं हूं ऐसा तो नहीं मान रहा है तो हाँ मेरा है, आपका ही है परंतु शरीर मैं हूं ऐसे ये सभी संसारी जिसको कि शरीर आदि परद्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर मैं उस रूप हूँ। राग द्वेष ले लो, कभी कभी परद्रव्यों के साथ भी एकत्व हो जाता है, नहीं होता है, जो सफेद कपड़े पहनता होगा तो उसके उस वेश के साथ भी एकत्व हो जाता है, होता है कि नहीं होता है नहीं वैसी बात नहीं, जो जिस उसने एक कोई मान लिया कि उस एक विशिष्ट उसका अपीयरेंस उसने बना लिया तो उस रूप ही अपने को मानता है ना, उससे भिन्न उसका कुछ सोचो तो वो तो उसको कल्पना भी उसको अच्छी नहीं लगेगी। तो कहते
फेवरेट कलर होता है, कलर है
वो तो पेट होना अलग बात है, परंतु मैं उस रूप हूँ बस, अपने को उस रूप में ढाल के बैठा हूँ। तो परद्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर जो प्रवृत्ति करते हैं, यानी हम अपने पर लगा लो अपनी जो जो प्रवृत्ति हो रही है सुबह से शाम तक की, किसके लिए, पापी पेट के लिए, कौन पापी पेट के लिए जो पेट रूप में हूँ मान रहा है उसी का नाम संसार है। यानी परद्रव्यों के साथ जो एकत्व बुद्धि है वो तो मिथ्या तो है ही है, और उसके साथ प्रवृत्ति भी कर रहा, और उसके कारण यही वो बारंबार शरीरों के साथ संयोग हो रहा है, नए कर्मों का बंध हो रहा है, और ये आजकल की बात नहीं, अनादि से ये बात हो रही है। जब हम पांच परावर्तन रूप काल देखते हैं तो आंसू आते हैं आंख मेरे, ऐसा भयानक स्वरूप, ऐसा मैंने अभी तक काल बिताया है, फिर भी क्यों बिताना चाहता है, क्यों बिताता है वो, ये एकत्र श्रद्धान रूप होकर प्रवृत्ति करता है। इसे उस संसार से जो मुक्त होना चाहते हैं, यानी उस श्रद्धान से जो मुक्त होना चाहते है, मार्ग क्या है? ये संसार से मुक्त होने के लिए भी क्या करते, कुछ प्रवृत्ति करना चाहते, मैं ये व्रत अंगीकार करूं, मैं ऐसा करूं, मैं इतना दान दूं, मैं ये करूं, इतने तप करूं, तो मुझे कुछ आगे बढ़ूंगा, मैं मुक्ति हो जाएगी। वो संसार से मुक्त होना चाहते, उसके लिए उपाय क्या था कि ये एकत्व श्रद्धान रूप जो हो रहा था वो श्रद्धान उसका छूट जावे तो वहां से रास्ता मिलेगा उसको, है इतना सरल। ये परद्रव्य रूप कभी हुआ ही नहीं अनादि से, उसने माना मैं परद्रव्य रूप शरीर रूप हो गया, मैं शरीर रूप हुआ तो उस मैं के लिए वो चाहे जो बात कर सकता है, जहां मैं स्थापित करो उस मैं के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जहां आत्मद्रव्य में मैं स्पना स्थापित हुआ तो उसकी पूरी विचारधारा उसके लिए वो कुछ करेगा। जहां शरीर मैं हूं मान लिया, उस मैं के लिए सब रात दिन वही चल जाता है, सुबह से रात तक उस मैं को नहलाना है, खिलाना है, उसके कपड़े पहनना है, वो जो कुछ करना उस मैं के लिए करना है। प्रश्न भी क्या उसके कि हम ये नहीं करें, हम बच्चों का पालन नहीं करें, वहां हम कहें या मैं कहता है तो उस किसको मैं रूप कह रहा है कि मैं माँ हूं और मुझे बच्चों को पालना है। मैं पना किसमें स्थापित किया? ये स्त्री पर्याय में, परंतु उस समय भी मैं आत्मद्रव्य हूं कि नहीं हूं? तो क्या बच्चों को छोड़ देना? वो स्त्री रूप से जो भाव हो रहे हो तो हो ही रहे अनादि से, उसको कोई ना करे, परंतु वो राग जो है बच्चों के प्रति उसका भी मैं ज्ञाता हूं करता, हमने उसी को मेरा स्वरूप मान लिया ना, थोड़ा मैं कौन हूं इसको और ये सोचने की बात है। लौकिक कार्य छोड़ने की तो बात है नहीं, वो तो आपके छोड़ने से भी नहीं छूटेंगे, अभी चलते रहेंगे कुछ काल तक, उससे कुछ नहीं है दोष।
गुरुदेव इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर देते हैं।
हाँ।
आपने जैसे पूछा कि हम बच्चों को छोड़ दें, ऐसा कोई पूछे तो उनको सरल जवाब दे दें, पकड़ा कब था ग्रहण कब किया था,
पाला कब था, बस सही यही बात।
ये बात बिल्कुल ख्याल में आ जाए तो आगे बढ़ते ही,
ये भी हम राग को कैसा करें, क्रोध को कैसा कम करें, पहले क्रोध का अपना मत मानो, मैं तो वे तो बहुत क्रोध करो, अपना मत मानो। तो जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं, कहते तक हमको संसार से मुक्त, हमको तो समय दर्शन चाहिए, समय दर्शन चाहिए बहुत आसान है, क्या है ये परद्रव्यों के साथ एकत्र श्रद्धान हो रहा है उसको, वो कैसे छूटेगा? तो आगम के अभ्यास से सही श्रद्धान से छूटेगा। तो जो संसार से मुक्त होना चाहते उन्हें निश्चय से विमुख नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत से मनुष्य वर्षा ऋतु में नदी के मैले जल को ही पीते हैं, किंतु जो समझदार होते हैं वे पानी में निर्मली डालकर मिट्टी से जल को पृथक करके निर्मल जल पीते हैं। क्या कहना, ये तो आपने तो सबके अनुभव की बात है, कभी गांव में गए कि नदी का जल देखा है, वो चाय जैसा होता है दिखने लाया कभी, उसमें क्या घुमाते पटकरी, यानी वो तो मराठी में तुरटी कहते हैं, एलम एलम, तो वो भर के रखते हैं बड़े बर्तन में और उसको थोड़ा घुमाते हैं तो थोड़ी देर के बाद देखो पूरा सब ये तो नीचे बैठ जाता है मिट्टी और ऊपर निर्मल एकदम पानी आ जाता है। तो ये तो हुआ दृष्टांत। इसी तरह अधिकांश अज्ञानी जन कर्म से आच्छादित अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव करते हैं। हमें तो कर्म दिखता ही नहीं तो अनुभव कहाँ हो रहा है? मैं कर्मों का आच्छादित, कर्म नहीं दिख रहा है परंतु कर्म के फल दिख रहे हैं। कर्म का फल क्या है? कर्मों के नाम बताएंगे आप? बोलो, हाँ बोलो ना बहुत जोर से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये आठ कर्म हुए, बराबर है ना।
अंतराय का दोनों तरफ सरल
है। नहीं नहीं पहले मोहनीय अंतराय बताया था,
वेदनीय वाला लिया था,
आयु नाम गोत्र उन्होंने पहले वेदनीय लिया था, हमने घाती को पहले लिया, आघाती को बाद में बताया। तो हम देखेंगे इनका फल तो जीव के अनुभव में आता है कि नहीं आता, कर्म तो नहीं दिखाई देता है, वो सूक्ष्म है। तो हर समय जो ज्ञान आवरण का कार्य क्या चल रहा है, ज्ञान की कुछ आवरण है तो हीनता है, जीव का स्वभाव केवल ज्ञान है, परंतु अभी कैसी अवस्था है, हीनादि ज्ञान हो रहा है, आवरण वाला ज्ञान एक सूक्ष्म ज्ञान है हमारा, अब उसमें भी तरतमता है, वो भी वहां निमित्त रूप से कर्म के आवरण की तरफ देखेंगे। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का कार्य यही, ज्ञान की हीनता, दर्शन की हीनता, ये तो हमारे आपके ख्याल में आवे ऐसी बात है। फिर मोहनीय का क्या कार्य हो रहा है, दर्शन मोहनीय के उदय में मिथ्या तो हो रहा है, और चारित्र मोहनीय के उदय में राग द्वेष के परिणाम वो भी हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, यानी अपने को कैसा अनुभव कर रहा है, वो राग द्वेष रूप, मैं बहुत दयालु हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, जो कुछ है अपने में, जो कुछ किसी विशेष कषाय की अधिकता होगी, वैसे चारों ही कषाय हरेक को होते हैं और हर अंतर्मूर्त में बदलते रहते हैं। किसी को हम लेबल लगा देते हैं बहुत क्रोधी है, तो उसके सभी क्रोध मान माया लोग सभी होते हैं। तो ये क्या हो रहे है, ये तो कर्म के उदय में जो राग द्वेष के परिणाम होते, हमने अपने को उस रूप माना, यानी हमने कर्म को कर्म से आच्छादित अपने को वैसा ही मान लिया। अंतराय के उदय में इसके जो पुरुषार्थ वगैरह नहीं हो रहे, जो हीनता हो रही, अलाभ वगैरह जो हो रहा है, तो अपने को वैसा मान लिया। वेदनी के उदय में क्या होता है, साता का उदय, असाता का उदय, अपने को उस रूप मानना, कैसा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, क्यों, परद्रव्य के कारण। फिर आयु, मैं इतनी लंबी आयु वाला हूँ या मैं इतनी छोटी आयु वाला हूँ, मैं अभी मर जाऊंगा, ये क्या है, अपने को उस रूप माना, उस कर्म के उदय जैसा माना, नाम कर्म के उदय में, हाँ ये बहुत अच्छा, शरीर की प्राप्ति हुई तो मैं गोरा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं ठीना हूँ, मैं जाड़ा हूँ, मैं पतला हूँ, मेरे आंखें ऐसे, मेरे बाल ऐसे, मेरे ये सब उसके, मेरे हड्डी ऐसे, मेरा सहनन संसार सब उसमें ले लो, एक कर्म के उदय में उस रूप अपने को माना, यही तो बात बताए ना कि अज्ञानी, अधिकांश अज्ञानी जन कर्म से आच्छादित अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव करते, यानी अपने को शरीर रूप ही अनुभव कर रहे, अपने को राग रूप ही अनुभव कर रहे, अभी उच्च गोत्र निच गोत्र जिस कुल में उत्पन्न हो अपने को उस रूप ही अनुभव करते, ये कर्म के उदय में, कर्म को तो नहीं देख रहे, बात तो यही हो रही है ना। देखो कर्म का फल तो दिखाई दे रहा है, शरीर की रचना है, जो अन्य जो कुछ बातें हो रही है वो तो अनुभव में आ रही है अपने, और उसके करने वाला है ना निमित्त रूप से है, कर्म तो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो इस जीव ने क्या मान लिया, मैं उस रूप हूँ या मैं उसका करने वाला हूँ, धरने वाला, ये जो कुछ उसकी मान्यता ही चली, तो कहता है कि अज्ञानी जन कर्म से आच्छादित अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव करते, अनुभव कर रहे ने अपने को उस रूप फील कर रहे, अपने को उस रूप जान रहे, केवल मानने की बात नहीं है, अनुभव में ने वैसा उसको भासित हो रहा है। किंतु कोई एक ज्ञानी अपनी बुद्धि के द्वारा, वहां निर्मली फल डाला था ना कुछ, निर्मली ऊपर हमने देखा था पानी में डाला था वो, तो कहते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय के स्वरूप को जानकर, गुरु से सुना या हमने वो पढ़ा वो आगम से जाना, तो निश्चय ने के जो कथन है वैसा जानकर कर्म और आत्मा को जुदा जुदा करता है, तब निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है कि उसमें निर्मल जल की तरह अपना चैतन्य स्वरूप झलकता है। ये बुद्धि के द्वारा ही सब करना है, बुद्धि में लेना है, निश्चय का स्वरूप हमने जाना, ज्ञान के द्वारा जाना, और फिर कर्म और आत्मा को जुदा किया, जुदा किया ने कर्मों को कहाँ डाल दिया, कोई गड्ढा किया और वो कर्मों को सब उसमें, नहीं, नहीं क्या किया, ज्ञान में ही करना है, जुदा जुदा करना है ना। ज्ञान में जुदा जुदा जानना। देखो जुदा होगा तब जाके जब सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी, परंतु ज्ञान में उसका जुदा करेंगे वो भले न रहने दो अपने पास। एक कर्म के उदय की अवस्थाएं अपने पास रखो। किसी ने आपको कुछ चीज दे दी संभालने को, तो उसको आपने रखी अपने तिजोरी में, तो अपनी संपत्ति मानकर रखते कि पराई है, मान पराई है। ऐसे ये कर्म के उदय में होने वाली बातें भले अपने पास रहेगी, वो कोई जाने वाली नहीं है, तो वो कर्म के खाते में रखो। अपना खाता अलग निकालो कि मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप है, केवल दर्शन स्वरूप है, जैसे सम्यक्त्व मेरा स्वरूप है, वितरागता मेरा स्वभाव है, ये सारे स्वभाव की बातें अपने में रखो और कर्म के उदय में होने वाली बातें अलग रखो। और ये पराई चीज है, मेरी नहीं है, मैं इस रूप नहीं है, बस ये स्वीकार करना है ज्ञान में, श्रद्धा में, कि कितना पैसा देना है, कितना दान देना है, कितना उपवास करना है। हाँ, इसलिए नहीं होता, ये बात सही कही आपने। वो बहुत आसान है ना। हाँ, दान देना उपवास करना आसान लगता है जीव को, क्या करे। या तो कहते हैं निर्मल जल की तरह अपना चैतन्य स्वरूप झलकता, अपने को भिन्न ज्ञान में अनुभव आता है। ये सारे पराये दिख रहे हैं वहां पर भी जल में, अभी वो मिट्टी नीचे तल में बैठे बर्तन के, उसको निकाला नहीं है वहां, तो वो दूर किए नहीं, वो तो दृष्टांत एक देश होता है, परंतु यहाँ पर भी वो ज्ञान भिन्न भाषित होगा। अभी तो एकमेक है, एक ही प्रदेशों में उत्पन्न हो रहे, कर्म भी यहीं पर स्थित है और राग द्वेष भी आत्मा के प्रदेशों में अपने विकार के परिणाम है, फिर भी ऐसे भिन्न भाषित हो गए जैसे अपना ज्ञान शुद्ध शुद्ध भाषित हो जाए। तो कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप झलकता है, उस स्वरूप का वह आस्वादन लेता है, यानी उसको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अपना स्वरूप ही ऐसा है ना, आनंदमय है, उसकी जरूर प्राप्ति होती है, पर्याय में प्रकट हो जाता है। अतः निश्चय न निर्मली के समान है, यानी वो आपके फटकरी के समान है, उसके श्रद्धान से सर्व सिद्धि होती है। यानी निश्चय न का जैसा कथन है वैसा हमको श्रद्धान में लेना है, उसकी प्रतीति करना है। तो पहले जानेंगे तो प्रतीति में लेंगे, इसलिए पहले वो व्यवहार नय को जानो, फिर वो उसने जो बताया है निश्चय ने उसको सच स्वीकार करके उसको जानो। पहले व्यवहार ने को जानकर फिर उसको गौण कर दिया, फिर निश्चय ने का जो कथन है उसको अंगीकार किया, यानी वैसा ही स्वीकार किया। तो कहते जो निश्चय नये है उसका श्रद्धान, यानी उस रूप में हूँ ऐसा श्रद्धान लेना है, अपना स्वभाव उसमें स्थापित करना है, कहते सर्व सिद्धि होती है। किंतु यानी इतना सरल है, किंतु अनादि काल से अज्ञान में पड़ा हुआ जीव व्यवहार ने के उपदेश के बिना समझता नहीं, क्योंकि आत्मा आत्मा है, बस ये निश्चय है ऐसा कहेंगे तो कुछ नहीं समझेगा। समझने अनादि का अज्ञान में पड़ा हुआ जीव है, अभी तक तो ये सब शरीर रूप ही अपने को मान रहा है, मैं आत्मा हूँ, जीव द्रव्य हूँ, ये मेरा स्वरूप कभी उसने सुना ही नहीं है। तो कहते हैं कि अनादि अज्ञान वाला जो जीव है, अज्ञानी जीव, तो व्यवहार नय के उपदेश के बिना समझता ही नहीं है। अतः आचार्य व्यवहार नय के द्वारा उसे समझाते हैं। समझाना क्या है? निश्चय नय समझाना। उसकी विधि क्या है, रूप क्या है, नहीं कैसे समझाएंगे? तो व्यवहार नय के द्वारा समझाएंगे कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, किंतु वह कर्मजनित पर्याय से संयुक्त है, यानी अभी संयोग में वो कर्म भी है और उसके उदय में होने वाली बातें भी विद्यमान है। वो होती ही नहीं तो फिर उसको बात ही नहीं थी। देखो वैद्य के पास जाते हैं तो वो बताता है आपको, ये आपकी बीमारी है, इसको भी कर्म के उदय में होने वाले बातें समझाएंगे तो उसको हाँ हाँ ये है, क्योंकि अभी वो पर्याय उनका संयोगों का पहले ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि वो उसके परिचय की बात है। इसलिए कहते कर्मजनित पर्याय से संयुक्त है, अतः व्यवहार से उसे देव मनुष्य आदि कहते हैं। ये कहना की बात बार बार आती है, भले उसको देव मनुष्य आदि हमने गति की अपेक्षा नाम दिए, परंतु है तो दोनों ही चैतन्य द्रव्य, आत्म द्रव्य, जीव द्रव्य। किंतु अज्ञानी उसे देव मनुष्य आदि स्वरूप ही जानता और मानता ही लगाया, ही करते निश्चय के निरपेक्ष ये व्यवहार, उसने सापेक्षता अपेक्षा नहीं रखी, बस यही उसका स्वरूप है, सर्वथा ऐसा मान। अतः यदि उसे देव आदि नामों से समझाया जाए तब तो समझता है। इसलिए पहले में पहले गतियां चार होती है, कोई देव है, कोई मनुष्य है, कोई नारकीय तीर्य, जहां ये सब आप दिख रहे हैं ना, ये सब तीर्य जो आप मनुष्य हो, ऐसा समझाया जाता है। किंतु चैतन्य स्वरूप आत्मा कहने से समझता है कि यह कोई अलग परमेश्वर है। अभी परमात्मा प्रकाश में भी परमात्मा का प्रकाश करते हैं, हमें लगता है परमात्मा है भगवान, कोई विराजमान है, उनका भी यहाँ प्रकाश होने वाला है, तो ऐसा है ही नहीं है, मैं स्वयं हूँ उस रूप। तो कहते कि चैतन्य स्वरूप आत्मा कहने से समझता है कि कोई अलग परमेश्वर है। निश्चय से तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है। किसी ने समझाया उसको, अरे आप स्वयं परमेश्वर हो, ऐसा कोई भी होता है क्या ऐसा? मैं तो हीन हूँ, दीन हूँ, ऐसा ही है। परंतु अज्ञानी को समझाने के लिए गति जाति आदि के द्वारा आत्मा का कथन किया जाता है। वो गति जाति को समझना उसको समझने के लिए नहीं है, गति जाति ने मार्गणाओं के जो समझते हैं या अन्य जो कोई उसकी बातें हैं, तो वो समझना तो जीव को ही है। संयोगों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे भेद दिखाई दे रहे हैं। हमें जीव कहीं दिखाई नहीं देता है, जीव तो अरूपी है, परंतु वर्तमान में ये जो एकेंद्रिय है, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय आदि जो भेद हमें आपको अनुभव में दिखाई दे रहे हैं आसपास में, तो उनके द्वारा हमको जो ज्ञात है उसके द्वारा अज्ञात की ओर जाना है। क्योंकि जीव अभी इन फॉर्म्स में, इन अलग अलग पर्याय में है, विद्यमान है, तो उसके द्वारा पहले हम उसके भेदों को समझेंगे। तो कहते गति जाति आदि, ये जाति कौन सी होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन कौन सी, हाँ, एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीनद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेन्द्रिय जाति, उसके द्वारा आत्मा का कथन किया जाता है। अतः अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए व्यवहार का उपदेश है, और ये उपदेश आचार्यों ने ही किया है। किंतु ये परंतु आया जो केवल व्यवहार की ही श्रद्धा करके उसी में रमता है, यानी वो जो निश्चय जो स्वरूप बताया शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसको तो मानता ही नहीं है, बस ये बाह्य चीजों में ही रमता है, यानी उसी को सच मान लेता है, उतना ही जीव का स्वरूप ऐसा मानता है। ये मनुष्य पर्याय जितना ही मैं हूं मान लिया इसने, तो वह अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप निश्चय मोक्ष मार्ग से विमुख होकर, यानी उसके उल्टी दिशा में जाकर, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का साधन करके अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। ये व्यवहार में क्या लिया था हमने, सात तत्वों का श्रद्धान लिया था, तो उसका ज्ञान लिया था और बाकी व्रतादि का आचरण लिया था, तो इसी को मोक्ष का अधिकारी, मैं अभी मोक्ष के नजदीक आया हूँ मान के। अब यही रुकेंगे हम, और चार पांच लाइन है। जावानी ते ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देव।